समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। एक नए दिन की नई सुबह में आकाशवाणी गोल्ड पर हम आपके साथ जुड़ चुके हैं न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे लेकर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और मेरे साथ हैं शगुन चोपड़ा। नमस्कार शगुन।
नमस्कार देवेंद्र। अ हार्टफेल्ट हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम वेल टू ऑल आवर लिसनर्स। वेल, दिस इज आवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे एंड विद मी एंड देवेंद्र वी आर टुडे गोइंग टू डेल्व इन द प्रोग्राम बाय गिविंग यू द लेटेस्ट न्यूज which is national and international. We'll also be providing you metro city updates and we'll explore today's, that is 8th of May's history as well. So make sure listeners that you stick around with us till the very end for the next half an hour. Let's get started with the headlines first, shall we, Devendra?
Ji. सबसे बड़ी खबरें, जैसा कि हम सभी जानते हैं, ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई हैं। ऑपरेशन सिंदूर के मद्देनजर सरकार ने आज नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इसमें सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी जाएगी। पार्टी लाइन से हटकर नेताओं ने ऑपरेशन सिंदूर की सराहना की है और आतंकवादियों के खिलाफ सशस्त्र बलों की कार्रवाई पर गर्व व्यक्त किया है। इससे पहले पहलगाम आतंकी हमले के बाद सभी दलों ने सरकार की हर संभावित कार्रवाई का समर्थन किया था। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कल पाकिस्तान और नेपाल से सटे सीमावर्ती राज्यों के उपराज्यपालों, राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों के साथ सोशल मीडिया को लेकर बातचीत की और उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अवांछित तत्वों के राष्ट्रविरोधी दुष्प्रचार पर कड़ी निगरानी रखने को कहा है। श्री शाह ने नई दिल्ली में सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए राज्य सरकारों और केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय में त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। गृहमंत्री ने कहा कि निर्बाध संचार बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए और संवेदनशील स्थलों की सुरक्षा और मजबूत की जानी चाहिए। उन्होंने राज्यों से जनता में अनावश्यक भय रोकने और अफवाहों के खिलाफ लोगों में जागरूकता फैलाने को कहा। बैठक में गृहमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की सीमाओं, सेना और नागरिकों को चुनौती देने वालों को भारत का करारा जवाब है। बैठक में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उपराज्यपाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और सिक्किम सरकार के प्रतिनिधि वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शामिल हुए। तो शगुन, जिस तरह की स्थितियां हैं उसको देखते हुए सरकार ने जैसे ही लोगों से अपील की है और राज्य सरकारों से अपील की है कि किसी भी तरह की अनावश्यक भय को फैलाने की या अफवाहों को फैलाने की कोई आवश्यकता नहीं है और ऐसी गतिविधि अगर कोई करता हुआ नजर आता है तो सरकार को, सरकारी एजेंसियों को उन पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए क्योंकि इस समय मामला बेहद संवेदनशील है, तो लोगों को बचना चाहिए अफवाहों को फैलाने से।
दिस इज वेरी नेसेसरी बिकॉज इट इज दिस पर्टिकुलर मूवमेंट, दिस इज वेरी सेंसिटिव एंड पैनिक शुड डेफिनेटली बी कंटेन्ड बिफोर इट गेट्स स्प्रेड, सो इट शुड नॉट स्प्रेड एट ऑल।
बिल्कुल, सभी को एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर भूमिका इस समय निभाने की आवश्यकता है।
जी देवेंद्र, आई एग्री विद यू टोटली।
जी,
ऑल्सो कंटिन्यूइंग विद दिस स्पिरिट हियर एज वेल, ऑपरेशन सिंदूर वेल, फिल्म एंड स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज दे हैव हेल्ड इंडियन आर्म्ड फोर्सेस फॉर ऑपरेशन सिंदूर अगेंस्ट पाकिस्तान। टॉकिंग अबाउट एक्टर्स, अक्षय कुमार, कंगना रनौत, अलू अर्जुन एंड सुनील शेट्टी प्रेज्ड इंडियन आर्म्ड फोर्सेस फॉर कैरिंग आउट मिसाइल स्ट्राइक्स इन रिटेलिएशन अगेंस्ट द बारबेरिक टेरर अटैक इन पहलगाम दैट किल्ड 26 सिविलियंस। In a social media post, Akshay Kumar captioned a post, Jai Hind, Jai Mahakal. BJP MP Kangana Ranaut reiterated the government's zero-tolerance stance on terrorism. She said, May God protect those who protect us. Alu Arjun said, May justice be served, Jai Hind. Sunil Shetty said, Terror has no place in the world. Well, filmmaker Shekhar Kapoor said, India's response to the terror attack in Pahalgam shows the world how responsible and confident it is in itself. Now, prominent sportspersons Sachin Tendulkar, Gautam Gambhir, Harbhajan Singh, Suresh Raina, Bajrang Punia, Sakshi Malik and Devendra Jhacharia also hailed the Indian Army's swift and calibrated counter-strike. In a social media post, Sachin Tendulkar said, There is no room for terrorism in this world. Bajrang Punia, whose brother was killed in the Pahalgam attack, said, Army has honored the sacrifice of his brother with courage and precision.
जी, और सिंदूर ऑपरेशन के बाद लद्दाख में लेह हवाई अड्डा बंद होने के कारण वहां पर्यटकों फंसे पर्यटकों को निःशुल्क आवास का प्रस्ताव दिया जा रहा है। होटल या गेस्ट हाउस से चेकआउट करने वाले पर्यटक जो अभी लेह में फंसे हुए हैं, वे आतिथ्य उद्योग की इस राहत का लाभ उठा सकते हैं। ऑल लद्दाख होटल एंड गेस्ट हाउस एसोसिएशन के सभी हितधारकों ने विशेष परिस्थितियों के दौरान पर्यटकों की देखभाल की जिम्मेदारी लेने और उनके प्रति अपना समर्थन व्यक्त करने के लिए कल इस सामूहिक निर्णय की जानकारी दी।
US lawmaker has called for Pakistan to not use the current tensions with India as a pretext to further undermine democracy, while another offered full-throated support and endorsement of India's retaliatory strikes. Raja Krishnamurti, who is of Indian descent, said that in the wake of last month's horrific terrorist attack in Pahalgam, the need to combat terrorism and prevent future violence has become even more urgent. Meanwhile, Sri Thanidar, the second Indian descent lawmaker, said terrorism cannot be tolerated and it cannot go unanswered. Thanidar added that India has the right to defend its people and he stands firmly with their ally in its efforts to dismantle these extremist networks. Krishnamurti from Illinois and Thanidar from Michigan are members of the Democratic Party here. Culture Ministry has successfully secured the postponement of the auction of the sacred Piprahava Buddhist relics by Sotheby's Hong Kong, which was scheduled for yesterday. The Piprahava relics were excavated in 1898 by William Clexton Pepe. These comprise bone fragments of the historical Buddha, along with soapstone and crystal caskets, a sandstone coffer, and offerings such as gold ornaments and gemstones. An inscription in Brahmi script on one of the caskets confirms these as relics of the Buddha, deposited by the Sakya clan. The majority of these relics were transferred to the Indian Museum, Kolkata, in the year 1899, and are classified as AA antiquities under Indian law, prohibiting their removal or sale. A portion of the bone relics was gifted to the King of Siam, while a selection of funerary gems retained by W.C. Pepe's great-grandson Chris Pepe, it was listed for the auction.
जी, और अब बड़ी खबरों के बाद रुख करते हैं कुछ खेल खबरों का। आईपीएल 2020 क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने कल रात ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स को आखिरी ओवर में 2 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 179 रन बनाए थे। जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स ने 19 ओवर और 4 गेंदों में 8 विकेट पर 183 रन बनाकर मैच जीत लिया। आज पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा।
कंटिन्यूइंग विद स्पोर्ट्स हियर देवेंद्र फॉर आवर लिसनर्स, वेल इंडिया डिफीटेड साउथ अफ्रीका बाय 23 रन्स टू सेट अप अ टाइटल क्लैश विद श्रीलंका इन द वुमेन्स ट्राई नेशन ओडीआई क्रिकेट सीरीज इन कोलंबो लास्ट नाइट। जमीमा रोड्रिग्स करियर बेस्ट सेंचुरी एंड हाफ टर्न्स फ्रॉम ओपनर स्मृति मंदना, आई बेग योर पार्डन, एंड दीप्ति शर्मा सो India post a huge 337 for 9 before the bowlers led by pacer seamer Amanjot Kaur and off spinner Deepti Sharma restricted the opponents to 314 for 7. India ended their round robin phase with 6 points from 4 games. Sri Lanka, on the other hand, have 4 points from 3 games and could garner 2 more points if they beat South Africa tomorrow. South Africa, after losing 3 consecutive games, are out of contention, even though they have a match to go against Sri Lanka tomorrow. I'm continuing with cricket here. Well, Rohit Sharma has announced his retirement from Test cricket with immediate effect. He announced his decision via a social media post. Rohit Sharma has scored 4,301 runs in 67 tests with 12 hundreds, a massive, and 18 half centuries. This is at an average of 40.57.
जी, तो एक अच्छी उपलब्धियां हैं इनके साथ। तो इस अनाउंसमेंट के साथ बहुत सारे जो रोहित के फैंस हैं, निश्चित तौर पर उनको निराशा हुई होगी।
डेफिनेटली, वेरी वेरी, दिस पर्टिकुलर न्यूज हैज बीन फॉर क्रिकेट फैंस।
जी,
दिस मेक्स देम इमोशनल।
जी,
वेल, मीनवाइल द 38-year-old क्रिकेटर विल कंटिन्यू टू रिप्रेजेंट इंडिया इन ODIs।
इट्स अ ह्यूज ऑनर एंड ऑब्वियसली द ग्रेट फीलिंग टू बी कैप्टनिंग इंडिया इन ऑल 3 फॉर्म्स।
सो बिग चीयर व्हेन ही केम आउट टू बैट, ही इज द लोकल बॉय Rohit Sharma.
Man, a century on debut for a very, very fine young batsman. Very well played. The 14th Indian to get 100 on debut.
If you really have to excel, you have to, you know, be more disciplined. And my focus is completely and purely have been on these particular things in the last few years.
तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें जिसमें खेल खबरें भी शामिल थीं। और अब हम बढ़ते हैं आगे इस कार्यक्रम में और बात करते हैं महानगरों से जुड़ी खबरों की। तो सबसे पहले चेन्नई की खबरें आइए सुनते हैं शगुन से।
यस, फर्स्ट बिगिनिंग हियर विद चेन्नई देवेंद्र। भारत संचार निगम लिमिटेड हैज अनाउंस्ड लिमिटेड पीरियड प्रमोशनल ऑफर्स टू सेलिब्रेट मदर्स डे अवेलेबल फ्रॉम दिस इज फ्रॉम 7th मई टू 14th मई 2025 अक्रॉस ऑल टेलीकॉम सर्कल्स। कस्टमर्स रीचार्जिंग थ्रू द बीएसएनएल सेल्फ केयर ऐप और बीएसएनएल वेबसाइट will receive a 5% discount on mobile prepaid voucher STV 599, PV 997 and PV 2399. Further, the validity of popular long-term mobile prepaid plans has been enhanced. It's PV 1499. This now offers 365 days validity and PV 1999 offers 380 days applicable through all recharge modes. These limited period offers are a tribute to the enduring bond and love shared with mothers, reinforcing BSNL's commitment to keeping families connected. Customers can avail the offer through the BSNL self-care app or by visiting portal.bsnl.in or by visiting their nearest BSNL customer service center or retailer.
Ji.
Now Devendra will begin with Delhi's updates.
Ji. दिल्ली की खबरों की बात करें तो दिल्ली सरकार की मंत्रिपरिषद ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए आभार व्यक्त करते हुए कल एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में परिषद ने सर्वसम्मति से भारतीय सेना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रशंसा की। प्रस्ताव में कहा गया है कि दिल्ली सरकार भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों के अपराधियों को सफलतापूर्वक बेअसर करने के लिए हमारे सशस्त्र बलों की बहादुरी, सटीकता और देशभक्ति की सराहना करती है। इसमें कहा गया है कि भारत आतंकवाद के सामने एकजुट है और ये ऑपरेशन हमारी ताकत, एकता और हमारे लोगों और हमारी भूमि की रक्षा करने के संकल्प का प्रमाण है। विपक्षी पार्टियों और भाजपा के अन्य नेताओं ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि पाकिस्तान में स्थित आतंकवादी ठिकानों पर भारतीय वायुसेना द्वारा की गई सटीक और निर्णायक एयर स्ट्राइक से संपूर्ण देश गौरवान्वित है। माफ कीजिएगा। उन्होंने कहा कि ये हमला न केवल आतंक के खिलाफ हमारी दृढ़ नीति का प्रतीक है बल्कि ये दर्शाता है कि भारत अब चुप नहीं बैठता बल्कि करारा जवाब देता है। दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भारतीय सेना को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बधाई दी है। वहीं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारतीय सेना को बधाई दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारतीय सेना और वीर जवानों पर गर्व है। उन्होंने ये भी कहा कि आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में 140 करोड़ देशवासी सेना के साथ खड़े हैं। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने भी भारतीय सेना को बधाई दी है। इस बीच दिल्ली के 11 जिलों में कल नागरिक सुरक्षा अभ्यास किया गया। इस अभ्यास में सायरन के साथ मॉक ड्रिल किया गया जिसमें हजारों स्वयंसेवकों, अधिकारियों, बचाव दलों, दिल्ली पुलिस, डीडीए, दिल्ली अग्निशमन विभाग और दिल्ली जल बोर्ड समेत कई एजेंसियों ने हिस्सा लिया। दिल्ली की सड़कों और फुटपाथ को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए लोक निर्माण विभाग और नगर निगम सहित अन्य विभाग की एक संयुक्त एक्शन टीम का गठन होगा। इस टीम का उद्देश्य सड़कों की 100% सफाई करना होगा। इस बात की जानकारी लोक निर्माण विभाग के मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने सभी जिला अधिकारियों के साथ बैठक में दी। उन्होंने कहा कि राजधानी में बारिश के मौसम के समय सफाई अभियान चलाया जाएगा। और अब हम जानते हैं शगुन से अगले महानगर की खबर जो है बेंगलुरु।
यस, बेंगलुरु's अपडेट हियर। Bengaluru, one of the most traffic-congested city in Asia, is planning to acquire 45 acres in the heart of the city to construct a multimodal transport hub, depot and three metro stations. And for this particular purpose, Bengaluru Metro Rail Corporation has offered 551 crore rupees. The proposal is to construct the transport hub at Hebbal, which is the nearest town to Bengaluru International Airport. I have one more update from Bengaluru here, Devendra, for our listeners. To enhance public safety in Bengaluru city, over 3 lakh CCTV cameras have been recently geotagged. With this, the total number of geotagged cameras, this have crossed over 5.35 lakh. The city police commissioner B. Dayanand says these cameras serve as the eyes and ears of the police department. Very rightly said, CCTV cameras very essential.
जी, आज के समय में बहुत जरूरी है और काफी डिपेंडेंसी हो गई है और मुझे लगता है कि अपराध पर नियंत्रण रखने या जो व्यवस्था है उसको बनाए रखने के लिए इन कैमरा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण
है. Yes, when we talk about public safety, one of the very essential, I guess, pillars for public safety जी, here. जी. Over to Devendra, to you.
मुंबई का रुख करते हैं. दो दिवसीय इंडिया पोर्ट्स कॉन्फ्रेंस 2025 कल से मुंबई में शुरू हो रही है. इस वर्ष का सम्मेलन का विषय है अगली पीढ़ी के बंदरगाह और मालवाहन बुनियादी ढांचे को खोलना. सम्मेलन में 200 से अधिक नीति निर्धारक, सरकारी अधिकारी और समुद्री क्षेत्र में काम करने वाले अग्रणी लोग अपनी प्रस्तुतियां देंगे. बंदरगाहों का आधुनिकीकरण, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स, स्थिरता और डिजिटलीकरण पर जोर देते हुए सम्मेलन विकासशील भारत के दृष्टिकोण के साथ संरेखित रणनीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे और न्यायमूर्ति एम एस कार्णिक की खंडपीठ ने कहा है कि फिल्म शादी के डायरेक्टर करण और जौहर का शीर्षक प्रथम दृष्टया फिल्म निर्माता करण जौहर के व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों का उल्लंघन है. इससे पहले मार्च में न्यायमूर्ति आर आई छागला ने पारित स्थगन आदेश जारी किया था. अदालत ने पहले फिल्म के निर्माता इंडिया प्राइड एडवाइजरी, लेखक संजय सिंह और निर्देशक बबलू सिंह को इसके शीर्षक या प्रचार में करण जौहर नाम का उपयोग करने से रोक दिया था. और हैदराबाद का रुख करते हैं अब. क्या खबरें हैदराबाद से हैं?
Yes, focusing on हैदराबाद. Telangana state government has sought the intervention of the Central Water Commission CWC to help restore the Medigadda barrage, key part of the Kaleshwaram lift irrigation scheme, after the National Dam Safety Authority raised serious deficiencies with its design and construction. State Irrigation Minister N. Uttam Kumar Reddy met newly appointed CWC Chairman Atul Jain yesterday and requested for guidance on how to address the structural issues highlighted by the NDSA, which is National Dam Safety Authority. He drew attention to the NDSA's findings on the integrity of the KLIS infrastructure, the Kaleshwaram Lift Irrigation Scheme, including the Medigadda, Annaram and Sundila barrages. NDSA, after its technical inspection, had recommended that the Telangana government seek technical advice and evaluate the safety of KLIS infrastructure. Its report cited multiple structural deficiencies, including sandpiping, foundation instability, and poor quality control, which it said had caused irreversible damage to some parts of the project. Acting on the recommendations, the minister requested the CWC to carry out a comprehensive geotechnical and structural review and advise on the restoration and safety of the project. Over to you, Devendra, now after Hyderabad's update.
Ji. कोलकाता का रुख करते हैं, जहां भारतीय मौसम विभाग के अलीपुर मौसम कार्यालय ने 11 मई तक दक्षिणी बंगाल के कई जिलों में लू चलने का पूर्वानुमान जारी किया है और चेतावनी भी जारी की गई. इस संबंध में पश्चिम बंगाल के पश्चिमी हिस्से में स्थित पश्चिम वर्धमान, वीरभूम, बांकुरा, पुरुलिया जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा सकता है. दक्षिणी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है. उत्तर बंगाल में मालदा जिले में भी लू चलने की संभावना है. विभाग ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में उत्तर पश्चिमी हिस्से से शुष्क हवा आने के कारण आसमान साफ होगा, धूप तेज होगी और इसके कारण लू की स्थिति बनी रहेगी. और मौसम की बात हुई है तो महानगरों के मौसम का हाल और डिटेल में जान लेते हैं. बाकी महानगरों में कैसा मौसम रहेगा? राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज भी आंधी और गर्जना के साथ बारिश होने की संभावना बनी हुई है. सुबह कुछ जगहों पर बूंदाबांदी और हल्की वर्षा हुई है शगुन. अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है. मुंबई में भी आंधी और बारिश की संभावना है. तापमान 24 और 30 डिग्री के बीच रिकॉर्ड किया जा सकता है. और कोलकाता का जिक्र हमने किया ही, जहां पर मौसम साफ रहेगा, धूप होगी, गर्मी बढ़ेगी. तापमान हालांकि अभी 26 है, धीरे धीरे यहां पर बढ़ेगा पारा और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री दर्ज किया गया है. बाकी महानगरों में मौसम कैसा रहेगा आप बताएं.
Talking about rainy first, Devendra, it is expected to have a generally cloudy sky and there will be light rain. The minimum temperature was 28 degrees Celsius and the maximum will be around 37 degrees. Bengaluru is expected to have a partly cloudy sky. The minimum temperature was 23 degrees and maximum it will be around 34 degrees. Hyderabad is expected to have a partly cloudy sky again and there will be one or two spells of rain or thunder showers expected here. The temperature will hover between minimum of 23 degrees and maximum of 37 degrees Celsius. Devendra here.
जी, और मौसम के बाद बात इतिहास की। इतिहास में आज के दिन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र अपने श्रोताओं के लिए।
Yes, beginning with the year 1886 here, we are taking you way back in time. American pharmacist John S. Pemberton, he developed Coca-Cola and amusingly a drink he originally built as a cure-all tonic.
जी.
Also talking about the year 1933, Mahatma Gandhi started his 21-day fast. This was on May 8 in the year 1933, making his third and anti Touchability fast for the improvement of Harijan's conditions.
जी, वर्ष 1945 में मित्र राष्ट्रों की सेनाओं के समक्ष जर्मनी का आत्मसमर्पण आज ही के दिन हुआ था।
And in this year as well, World War II in Europe ended in this particular year on May 8 when German forces surrendered unconditionally and this day is celebrated as Victory in Europe Day.
जी, भारतीय मूल के 69 वर्षीय लॉर्ड स्वराज पॉल ब्रिटेन के चौथे सबसे बड़े विश्वविद्यालय ब्रिटिश यूनिवर्सिटी के कुलपति नियुक्त हुए थे और वर्ष 2004 में श्रीलंका के मुरलीधरन ने 521 विकेट लेकर सर्वाधिक टेस्ट विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया था।
Also, let's tell our listeners, well, today it's World Red Cross and Red Crescent Day. It is observed every year on this day.
जी, ये दिन Red Cross और Red Crescent Movement के तहत काम करने वाले लाखों स्वयंसेवकों और कर्मचारियों के मानवीय कार्यों के सम्मान में मनाया जाता है।
Well, this official theme for this year, it is Keeping Humanity Alive. Also, let's tell our listeners that this marks the birth anniversary of Henri Dunant, the founder of the International Committee of the Red Cross, and he was the first recipient of the Nobel Peace Prize. Yes. Also, today it's World Thalassemia Day. It is observed on May 8, and the need it is to promote action and advocacy related to thalassemia prevention, management, and care for it.
थैलेसीमिया एक अनुवांशिक रक्त विकार है जो शरीर की हीमोग्लोबिन बनाने की क्षमता और लाल रक्त कोशिकाओं में ऑक्सीजन ले जाने की के लिए जिम्मेदार प्रोटीन को प्रभावित करता है। ये तब होता है जब माता पिता दोनों के जीन दोषपूर्ण होते हैं। थैलेसीमिया के विभिन्न प्रकार हैं जिनमें अल्फा और बीटा थैलेसीमिया शामिल है जिनकी गंभीरता अलग अलग होती है।
Also, let's tell our listeners the theme for this year. It is Together for Thalassemia, Uniting Communities, Prioritizing Patients. This is this year's theme.
जी, और अब आगे बढ़ते हैं, स्मरण करते हैं उन महान लोगों को, महान विभूतियों को जिनका जन्मदिन, जयंती या पुण्यतिथि है। इस क्रम में सबसे पहले स्मरण कर रहे हैं भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले क्रांतिकारियों में एक, भाई बाल मुकुंद को हम श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं जिनकी आज पुण्यतिथि है। दिल्ली षड्यंत्र में फांसी पाने वाले प्रमुख क्रांतिकारियों में से वे एक थे। सन 1912 में दिल्ली के चांदनी चौक में लॉर्ड हार्डिंग पर फेंके गए बम कांड में मास्टर अमीर चंद, भाई बाल मुकुंद और मास्टर अवध बिहारी को 8 मई 1915 को फांसी पर लटकाया गया था, जबकि अगले दिन 9 मई को अंबाला में वसंत कुमार विश्वास को फांसी दी गई थी। यद्यपि भाई बाल मुकुंद पर जुर्म साबित नहीं हुआ था, फिर भी शक के आधार पर अंग्रेज हुकूमत ने उन्हें सजा दी। भाई बाल मुकुंद महान क्रांतिकारी भाई परमानंद के चचेरे भाई थे। दिल्ली में जिस स्थान पर बाल मुकुंद को फांसी दी गई वहां शहीद स्मारक बना दिया गया जो दिल्ली गेट स्थित मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में स्थित है।
ऑल्सो लिसनर्स, टुडे वी आर रिमेम्बरिंग जिया फरीदुद्दीन डागर। वेल, द क्लासिकल वोकलिस्ट बिलोंगिंग टू द ध्रुपद ट्रेडिशन, द ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग फॉर्म ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक हियर।
जी, सुप्रसिद्ध ध्रुपद गायक जिया फरीदुद्दीन डागर की आज पुण्यतिथि है। उस्ताद जियाउद्दीन डागर के बेटे फरीदुद्दीन ने मशहूर रुद्र वीणा वादक अपने भाई जिया मोहीउद्दीन डागर के साथ मिलकर शास्त्रीय गायन की ध्रुपद शैली को पुनर्जीवित करने में बड़ी अहम भूमिका निभाई थी। फरीदुद्दीन का जन्म 15 जून 1932 को राजस्थान के उदयपुर में हुआ था, जहां उनके पिता उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह के दरबार में संगीतज्ञ थे। फरीदुद्दीन ने देश विदेश के कई बड़े उत्सवों में अपनी कला का प्रदर्शन किया था। संगीत जगत को उनके योगदान के लिए उन्हें विभिन्न सम्मानों से नवाजा गया, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मिला तानसेन सम्मान शामिल है। 1994 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से वे सम्मानित किए गए। अगर उनके शिष्यों की बात करें तो पंडित उमाकांत रमाकांत गुंदेचा, पंडित ऋतिक सान्याल, उदय भवालकर, पुष्पराज कोष्ठी जैसे महान ध्रुपद गायक उनमें शामिल हैं। प्रख्यात ध्रुपद गायक उस्ताद जिया फरीदुद्दीन डागर का मुंबई में 8 मई आज ही के दिन 2013 में निधन हुआ था। वो 80 वर्ष के थे और कुछ समय से बीमार चल रहे थे। उस्ताद जिया फरीदुद्दीन डागर के इंतकाल की खबर से दिल को यकीन दिलाना मुश्किल हुआ उस समय लोगों को, क्योंकि ध्रुपद की सबसे बुलंद आवाज लोगों को लग नहीं रहा था कि खामोश हो गई है। आइए सुनते हैं उनकी आवाज।
So this is what he said about vocal and instrumental music, and I'm quoting, while vocal music is an effective tool for presenting the specific musical style of a gharana, the essence of a gharana music can also be communicated through an instrument. And in reality, vocal music and instrumental music give and take ideas from each other in reciprocity. This is what he said, Devendra.
Ji, aur बात करते हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान करने वाले सेनानियों में एक गोपबंधु चौधरी का, कि गोपबंधु चौधरी का जन्म 8 मई आज ही के दिन 1895 को ओडिशा के कटक में हुआ था। उन्होंने 1914 में कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से गणित में एमए की परीक्षा पास की। तत्कालीन अंग्रेज सरकार ने ओडिशा में अकाल के दौरान सहायता अधिकारी उन्हें नियुक्त किया था, लेकिन असहयोग आंदोलन जब शुरू हुआ तो गोपबंधु चौधरी ने नौकरी छोड़ी और आंदोलन में कूद पड़े। गोपबंधु चौधरी ने विनोबा भावे के प्रसिद्ध भूदान आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने कटक के निकट अलाका आश्रम की स्थापना की और स्वयं 6 वर्ष आश्रम में रहकर विभिन्न रचनात्मक कार्यों को आगे बढ़ाया। नमक सत्याग्रह में उन्होंने ओडिशा का नेतृत्व किया। 1930 में विदेशी सरकार ने गोपबंधु चौधरी की वृद्ध माँ को छोड़कर पूरे परिवार को जेल में डाल दिया था। भारत की आजादी के लिए कई क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने वाले गांधीवादी कार्यकर्ता गोपबंधु चौधरी का निधन 29 अप्रैल 1958 को हुआ। और अब स्मरण करते हैं प्रसिद्ध आध्यात्मिक चिंतक और वेदांत दर्शन के विश्व प्रसिद्ध विद्वान स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती को, जिनकी आज जयंती है। इनका मूल नाम बालकृष्ण मेनन था। भारत भ्रमण में धर्म संबंधी लोगों में फैली अनेक भ्रांतियों के निवारण के लिए स्वामी चिन्मयानंद ने गीता ज्ञान यज्ञ प्रारंभ किया और 1953 में चिन्मय मिशन की स्थापना की। स्वामी जी ने सैकड़ों सन्यासी और ब्रह्मचारी प्रशिक्षित किए, हजारों स्वाध्याय मंडल स्थापित किए, अनेकों सामाजिक सेवा कार्य प्रारंभ करवाए। उपनिषद, गीता और आदि शंकराचार्य के 35 से अधिक ग्रंथों पर उन्होंने व्याख्याएं लिखी। गीता पर लिखा गया उनका भाष्य सर्वोत्तम माना जाता है। 1942 में वे आजादी के राष्ट्रीय आंदोलन में भी शामिल हुए और कई महीने उन्हें जेल में रहना पड़ा। हालांकि वो जीवन की सक्रियताओं के बावजूद जन्म मृत्यु और आध्यात्मिकता के शाश्वत प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए आतुर और प्रयत्नशील रहे और इसीलिए चिन्मय मिशन की स्थापना की, जो दुनिया भर में वेदांत के ज्ञान का आज भी प्रसार कर रहा है।
टुडे वी आर ऑल्सो रिमेम्बरिंग देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय, फिलोसोफर। Well, he made contributions to the exploration of the materialist current in ancient Indian philosophy. He is known for Lokayata, a study in ancient Indian materialism, which is his exposition of the philosophy of Lokayata. Well, he is also known for his work on history of science and also scientific method, which is in ancient India. And posthumously, in the year 1998, he was awarded the Padma Bhushan.
जी, सुप्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी को भी आइए नमन करते हैं। उपशास्त्रीय संगीत की ठुमरी शैली की उन्होंने खूब सेवा की और ठुमरी की रानी कही गई। वे बनारस घराने से संबंधित हैं। गायकी के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें वर्ष 1972 में पद्मश्री, 1989 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और संगीत नाटक अकादमी से भी वो सम्मानित हुई और 2016 में उन्हें भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। गिरिजा देवी का जन्म 8 मई 1929 को कला और संस्कृति की प्राचीन नगरी वाराणसी में हुआ था। गिरिजा देवी के गुरु पंडित सरजू प्रसाद मिश्र शास्त्रीय संगीत के मूर्धन्य गायक थे। गिरिजा जी की खनकती हुई आवाज और बनारस का विशेष अंदाज उनके गायन में विशेष आकर्षण पैदा करते हैं। उनकी ठुमरी, कजरी और चैती आज भी लोकप्रिय है। आइए सुनते हैं।
Also, listeners, well, today, after listening to this beautiful voice by the Queen of Thumri, well, very renowned vocalist, today it's also birthday of Pia Srijesh Indian field hockey coach and also former player. He was the captain of the national team and played as a goalkeeper, and also being part of the teams that clinched gold medals at the 2014 and 2022 Asian Games, also awarded Padma Shri, Padma Bhushan in the year 2025.
और इसके साथ ही अब हम चाहेंगे अनुमति आज सवेरे यहीं संपन्न करने की, लेकिन आप लगातार बने रहिए आकाशवाणी के साथ। धन्यवाद, नमस्कार, नमस्कार।